पुराने दोस्त गुजर जाते हैं, नए दोस्त आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गुजरे हुए दिन चले जाते हैं और फिर नए दिन आते हैं। इसी तरह नए दिन जो है वो भी गुजरते चले जाते हैं। लेकिन अहम बात जो यहां पर है वो ये है कि कैसे इन दिनों को मानादार बनाया जाए, कैसे इन दिनों को यादगार बनाया जाए, कैसे इन दिनों को ऐसा बना दिया जाए कि पूरी जिंदगी हमें भूल ना सके। और ये काम हम सिर्फ ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम आज के दिन या हमारा जो आज है, प्रेजेंट है, इसमें कोई ऐसा काम करें जो हमें भी याद रहे और हमारे आसपास के लोगों को भी याद रहे। प्रोग्राम सबो जिंदगी में बहुत बहुत खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सबो जिंदगी में बहुत बहुत आपको खुश आमदीद कहता हूँ तेहरान स्टूडियोज से, जो जिसके बाहर जो है बिल्कुल ऐसा ही मौसम, ये जो आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है थोड़ा बहुत ऐसे ही मौसम, पहाड़ों पे तो ऐसी बर्फ पड़ी है, क्या ख्याल है? ठीक है, मैं सलामत करता हूँ।
अंकल की अर्ज़ में अपने प्यारे प्यारे और अजीज और अपने खूबसूरत से नाजरीन की भी खिदमत में सलामत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, एक खूबसूरत सुबह का आगाज कर चुके होंगे हमारे ठंडे ठंडे वाले मौसम पे प्रोग्राम के साथ, सुबह जिंदगी के साथ।
बिल्कुल, मैं जल्दी से कुछ बातें जो है वो भूल ना जाए बताता चलूँ कि हमने प्रोग्राम में आज से कुछ नए आइटम्स, मजे मजे के नए आइटम्स इंशाल्लाह हम शुरू कर रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि आपको वो आइटम्स पसंद आएंगे।
और मैं फौरन बताते चलूँ कि आइटम्स का इजाफा क्यों हो रहा है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, हमने कहा हम भी थोड़ा भी चेंजेस ले आते हैं, क्यों सिर्फ मौसम चेंज हो, हमारा प्रोग्राम भी थोड़ा सा चेंज होना चाहिए।
बिल्कुल ऐसे ही है, और इसी से निकला हुआ हमारा हफ्ते का मौजू है, और वो क्या है रुबाब हमें बताएंगी।
मैं ये नाज़रीन से पूछना चाहूंगी इस बारे में, नाज़रीन आप क्या चाहेंगे इस मौजू का नाम हम क्या दें? एक नई जिंदगी पाना, ना नई जिंदगी उस मसले में, यानी मैं आपको इस तरह बताऊं, एक गलती के बाद एक नई जिंदगी पाना, किस तरह सुधारना उसको, या वो एनर्जी जो आती है एक गम के बाद, जिस तरह आप देखते हैं कि एक फज्जड़ के बाद बहार आती है, फिर से फूल खिलते हैं, फिर से पत्ते आते हैं, दरख्त हरा भरा होता है, हम भी अपनी जिंदगी को एक फज्जड़ के बाद जो कहते हैं किस तरह हम उसको हरा भरा कर सकते हैं। लेकिन आपका इस मौजू के बारे में क्या ख्याल है?
बड़ी अच्छी बात की है, और इस बार हम जो है सब कुछ आपके ऊपर छोड़ें, इस मौजू का नाम भी आप पे छोड़ें, आप हमें बताएंगे इसका मौजू का नाम क्या रखें। लेकिन बहरहाल इस पर बहस होगी, अपने माहिरीन से हम बहस करेंगे, आपसे बहस करेंगे, खुद बात करेंगे। एक नया, एक नई शुरुआत,
बिल्कुल
एक नई,
आपने एक वर्ड दे दिया,
वर्ड दे दिया, मैं मेरा ये जो है वर्ड, लेकिन मेरा वर्ड जो है कॉपी नहीं करना, आप लोगों ने आपने अपना वर्ड देना है,
ठीक है।
और लेकिन हमें बताना आपने ये है कि कैसे एक नई शुरुआत की जा सकती है, बहुत अहम नुक्ता है,
या की जा सकती है नहीं की जा सकती। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि नहीं, जिंदगी यही है और यहीं पे खत्म होगी वही, और नई शुरुआत नहीं होती।
बिल्कुल, मसला ये है कि अगर खुदा ना खासा कोई मसला पेश आ गया जिंदगी में, तो वहां ठप होगी जिंदगी। क्या वहां पर जिंदगी को ठप कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या उस इत्तेफाक से, माफ कीजिएगा, उस हादसे से कुछ सबक लेके आगे चलना चाहिए या नहीं, उस हादसे से सबक ये लेना चाहिए कि जी बस जिंदगी खत्म होगी। ये बड़ा जो अहम मौजू है रुबाब, इसके बारे में जो है बात करना बहुत जरूरी है कि हम अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई हादसा हुआ और उसके बाद बस
इंसान दिल हार जाता है, उम्मीद हौसला हार जाता है, और समझता है कि यही ख़त्म हो गया और यहीं पे मुझे रुक जाना है और इसके अलावा ज़िंदगी ही नहीं है। मेरे ख्याल से, मेरा जो अपनी पर्सनल राय होगी, नहीं, इस तरह बिल्कुल नहीं है। खुदा ने इतनी नेमतें दी हैं हमें, इतनी नेमतें दी हैं कि हम, यानी जिस हमारी सोच से भी बाहर है, तो फिर हम क्यों ना उन नेमतों का इस्तेमाल करें अपनी ज़िंदगी में, अपने रब का शुक्र अदा करें कि रब, अल्लाह ताला तूने हमें इतनी नेमतें दी हैं, इतनी हमें वसीले दिए हैं कि हम कामयाबी तक पहुंच सकें, और देखिए उनका इस्तेमाल करना जरूरी है। मैं ये बोलती हूँ,
आपने बिल्कुल ठीक बात की, और इसमें इस मौजू में हमारे कुछ और मौजू भी मिक्स हो जाते हैं, और उसमें एक और मौजू ये है कि मायूसी, जिस पर हम बात कर चुके हैं, अगर नई शुरुआत उसी वक्त इंसान कर सकता है जब उसको उसका ईमान मजबूत है, और जब वो कभी मायूस नहीं होता, अगर तो वो मायूस हो जाता है तो वो नई शुरुआत नहीं कर सकता।
और खुर्रम, एक बात अगर देखा जाए, हमारा जो ये मौजू है इसमें हमारे सारे पिछले मौजू का नचोड़ निकल आता
बिल्कुल।
है, उम्मीद हो गई हम उस पर बात कर चुके हैं, मायूसी हो गई हम उस पर बात कर चुके हैं, अल्लाह पे ईमान रखना, कितना आपका ईमान अल्लाह पे कवी है, इस पर भी हम बात कर चुके हैं। ये तमाम, इस तरह बोल सकते, तमाम मौजू का एक निचोड़ इस मौजू में, यानी मिल जाते हैं आपस में, या इसमें निकल आता है।
बिल्कुल सही बात की आपने, और देखते हैं कि एक और चीज जहन में आ गई मेरे, वो ये है कि ये दुनिया जो है वो फानी है, तो अगर इस दुनिया में कोई परेशानी पेश भी आती है, कोई चीज चली जाती है, कोई चीज आ जाती है, बहरहाल ये चीजें आती जाती रहती हैं, तो आया क्या हम लोगों को इस पे इतना परेशान हो जाना है कि बस जो है सब कुछ जिंदगी जो है वो उसको बंद कर दिया और बस बैठ गए? ये सवाल है हमारा आज का, तो आज हमें बताएंगे आप कि इसका जवाब क्या है आपके ख्याल में, तो चलते हैं देखते हैं कि कैसे आप प्रोग्राम शुभ जिंदगी में शामिल हो सकते हैं। जी आपकी खिदमत में हाजिर हैं, हमने आपको दिखा दिया कि आप लोग कैसे हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। रुबाब, हमने एक नया आइटम जो है अपने प्रोग्राम में शामिल किया है और वो ये है कि हम कुछ जो कहानियाँ होती हैं वो अपने नाज़रीन को सुबह सवेरे सुनाएंगे, लेकिन कहानियाँ कौन सी, वो सोने वाली कहानियाँ नहीं हैं कि रात के टाइम में जो सोने वाली माएँ सुनाती हैं, आपको तो एक्सपीरियंस होगा बहरहाल के जो है आप बहरहाल कौन सी कहानी, किस किस्म की कहानियाँ सुनाती
हैं? मेरी बेटी कहानियाँ सुने तो बहुत ही अच्छी बात है, वैसे वो सुनती
है। अरे तो कुछ माएँ जो है वो ड्रोनी किस्म की कहानियाँ सुनाती हैं ताकि बच्चे,
अच्छा नहीं ये होता है, देखिए बच्चे बहुत तंग करते हैं तो मैं भी सुनाती हूँ, मैं बोलती हूँ वहाँ पे देखो जिन आ रहा है और तुम्हें खा जाएगा आके, देखिए वरना वो कंट्रोल में नहीं आती है।
बहरहाल ये है कि रुबाब आपकी जो बेटी हैं वो थोड़ा सा जो है वो माशाल्लाह 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 बहुत तेज हैं, इस वजह से
थोड़ा
जो है
सा लाइन से हट के
करने पड़ती हैं, वरना आप जो है ये बहरहाल ये काम ना करें, अपने बच्चों को डराए नहीं। बहरहाल कहानियां जो है हम बहलूल से जुड़ी हुई कहानियां आपको सुनाएंगे और उम्मीद है कि आपको जो है वो कहानियां पसंद आएंगी, क्योंकि इन कहानियों में एक जो खास बात होती है रुबाब वो ये होती है कि ये कहानियां हमें एक नतीजा देती हैं, हमें एक वो कहते थे ना मोरल देती हैं,
मोरल ये हमारे जो बचपन में जो लिखा था सबक, कहानी का सबक,
बिल्कुल जो ये है ये नतीजा और जो सबक होता है ये हमें मिलेगा इन कहानियों में। तो चलते हैं पहली कहानी जो है उस वो देखते हैं और उसमें देखते हैं कि उसमें हमें क्या दिखाया जा रहा है और उसका नतीजा और उसका सबक क्या निकलेगा। तो चलते हैं कहानी देखते हैं। जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहानी देखी सुनी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। बहरहाल इस कहानी पे भी हम तफसीलन इंशाल्लाह जो है मैं और रुबाब बात करेंगे, लेकिन अभी चलेंगे हमारा जो गुफ्तगू का सेगमेंट है वो कम कम शुरू होना चाह रहा है, तो चलते हैं रुबाब की तरफ ताकि रुबाब जो है गुफ्तगू सेगमेंट को शुरू कर सकें। जी रुबाब,
बहुत शुक्रिया खुर्रम। और नाज़रीन आपने देख ही लिया कैमरे पे, जिस तरह की आपको पता है आज बच्चों का दिन होता है और हमारे साथ डॉक्टर आखला हकीमी साहिबा मौजूद हैं और आज का हमारा मौजू है बच्चों में दमे की बीमारी। इंशाल्लाह हम इस मौजू पर पूरी तफसील के साथ बात करेंगे। चलते हैं डॉक्टर आखला साहिबा के पास। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह।
और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी आप तशरीफ लाए यहाँ पर,
बहुत बहुत शुक्रिया।
और आज सबसे थोड़ा रूटीन से हट के मेरा पहला सवाल ये होगा कि हमारा हफ्ते का मौजू चल रहा है एक नई शुरुआत ज़िंदगी में, या आप बोलिए एक फेलियर के बाद, एक नाकामी के बाद, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आपकी क्या राय?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। वैसे ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ की तरफ निशानदेही की है या आप कर रही है, अंडरस्टूड बात है। अगर हम हर फेलियर के बाद अगर दोबारा से शुरू करेंगे तो वाकई जो है वो ज़िंदगी एक तरीके से संवर सकती है, अगर नहीं उसी में फंसे रहेंगे, उसी में बैठ के जो है वो अफसोस करते रहेंगे, रोते रहेंगे, तो फिर जो है आगे बढ़ने के चांसेस बहुत कम होंगे।
सही।
तो इसलिए जो है वाकई एक अच्छी चीज़ की तरफ आप लोग निशानदेही करें, उम्मीद है कि जो है नाज़रीन इस नाज़रों को इंशाल्लाह कि हमारे नाज़रों को जो है वो इन सब बातों का पता है, लेकिन फिर भी याद दहानी के लिए अच्छी बात है कि हर फेलियर के बाद या हर उसके बाद जो है एक नए सिरे से शुरू करें। ख़ास तौर पर जो है मैं इस पे बात करूँगी कि अगर कभी जो है वो अपने जो है फैमिली मेम्बर्स में या दोस्तों में कहीं अगर नाराज़गी चल जाए या कहीं से दिल दुखे तो लेकिन उसको छोड़ के दोबारा से शुरू करें, एक मरतबा और मौका देना चाहिए।
आपने बहुत अच्छी तरह इशारा किया, हमने हर चीज़ की तरफ इशारा किया, इला इसके के खानदानी मुश्किलात या दोस्ती आपस में जो होती है
उसको भी जो है इसमें एक चांसेस देने चाहिए, एक मरतबा नए सिरे से जो है वो।
बहुत खूबसूरत बात की, बहुत खूबसूरत बात की। डॉक्टर साहब चलते हैं आज के असली मौजू की तरफ, दमे की बीमारी। सबसे पहला सवाल, दमा या अस्थमा को मेरे ख्याल से ये बोलते हैं, तो ये क्या है? ये
देखिए जो है बच्चों में ख़ास तौर पर सारी बीमारियों को जो है वो तशख़ीस देना या उनको कंट्रोल करना वाकई थोड़े बहुत जो है या थोड़े बहुत तो के बहुत हद तक जो है मुश्किल जो है एक मुश्किल बात है। दमे की बीमारियों को हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं कि अगर जो है वो किसी भी चीज़ की वजह से, यानी अब मैं बात करूँगी कि वो कौन कौन सी चीज़ें, किसी भी चीज़ की वजह से अगर सांस लेने में मुश्किल आ जाए, उसके साथ बच्चे को जो है या बड़े को खांसी भी होने लगे, बच्चों और बड़ों में दोनों की डेफिनेशन एक है, और साथ में जो है वो सांस लेने में मुश्किल इस तरीके से आ जाए कि आवाज़ भी, यानी सांस जैसे अभी हम सांस ले रहे होते हैं तो इसके साथ आवाज़ नहीं है, पता नहीं चल रहा है, लेकिन सांस जो लेने के जो चाहे वो अंदर हवा ले रही हो या बाहर जो है वो उसको खारिज कर रहा हो तो उसमें अगर आवाज़ भी आने लगे जो है इसको हम कहेंगे कि ये इनको जो है हो सकता है कि दमे की शिकायत हो। ये उसकी जो है डेफिनेशन में कहते हैं कि ये तीन चीज़ों का होना जो है वो थोड़े बहुत ज़रूरी है, यानी सांस लेने में दुश्वारी, साथ میں جو ہے وہ کھانسی اور سانس کے جو ہے وہ آواز آنا ہوتا ہے. اس میں اصل میں یہ ہے کہ جو بھی چیز ہو, چاہے وہ الرجن ہو یا نان الرجک فیکٹرز کی وجہ سے ہو, اگر جو ہے جو ہمارے نظام تنفس کی جو نالیاں ہے وہ اگر تنگ پڑ جائے تو اس میں جو ہے یعنی دمے کی بیماری میں یہ چیز ہوتی ہے, وجہ یہ ہے, یعنی ہوتا اس میں یہ ہے کہ جو سانس کی نالیاں ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے, بہت باریک ہو جاتی ہے. اس باریک ہونے کی وجہ سے جو ہے ایک تو ہوا صحیح طریقے سے خارج نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے جو ہے وہ آوازیں آنے لگتی ہیں. اوپر سے جو وہاں کے سیکریشن ہوتے ہیں, یعنی ہمارے جو جتنے بھی نظام تنفس کے جتنے بھی نالیاں ہیں, چاہے وہ جو ہے وہ باہر ہو, جیسے فرض کریں ناک وغیرہ,
جو بھی سانس لینے کے ذریعے ہیں,
جی بالکل, تو اس ساروں میں جو ہے ایک سیکریشن ہوتے ہیں, یعنی ایک اس جگہ کو موئسچر رکھنے کے لیے سیکریشن ہوتے ہیں, اور بھی بہت سارے کام کرتے ہیں موئسچرائزنگ کے علاوہ. تو وہاں وہ جو سیکریشن ہے وہ صحیح طریقے سے پھر باہر نہیں آ پا رہے ہوتے ہیں. اگر ریزن جو ہے وہ ورم ہو, تو اس ورم کی وجہ سے, ورم میں بھی یہ ہوتا ہے چاہے جہاں بھی ہو, اگر کہیں چوٹ لگ جائے, آپ لوگ تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ جگہ پھول جاتی ہے, سوجن سے آ جاتی ہے, تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کہیں پہ چوٹ لگے تو جو ہمارے نظام میں جو دفاعی نظام ہے اس کے جو سیلس ہے وہ وہاں پہ مائگریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ اس سائڈ پہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تاکہ اس جگہ کو ترمیم کر سکے, اس جگہ کو صحیح کر سکے. ٹھیک, اس چیز میں جو ہے وہاں پہ جو سیلس ہوتے ہیں وہ سارے جو پہنچ جاتے ہیں, تو ان کی جو سیکریشن ہوتی ہے وہ خود سیلس کی وجہ سے یا ان کی سیکریشن کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ چیز سوجن کی صورت میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. تو جو دمے کی بیماری میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک تو نالیاں تنگ پڑ جاتی ہیں. اب جو تنگ پڑ جاتی ہے وہ دو فیکٹرز کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہو سکتا ہے, یعنی اس میں جو دو میکینزم سے, ایک تو ہوتا یہ ہے کہ جو خود جو مسلس ہوتے ہیں ہماری جو نالیاں ہوتی ہیں سانس کی, وہ مسل جو ہے کانٹریکٹ ہونا شروع کر جاتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ نالی جو ہے تھنگ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ ورم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اس ورم کی وجہ سے بھی جو ہے جو نالی ہے جو اس کے سائز ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے جو ہے جب بچہ یا جو بڑا ہوتا ہے وہ جب سانس لیتا ہے تو تھوڑا بہت آسانی رہتی ہے, لیکن جب سانس کو باہر کی طرف نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں جو ہے بہت مشکل پیش آتی ہے. اور میں نے کہا کہ ورم کی وجہ سے بھی وہاں کے سیکریشن, اور ویسے بھی جو وہاں پہ سیکریشن ہوتے ہیں وہ پھر صحیح طریقے سے باہر نہیں نکل پاتے, یا جو ہے وہ ری ایبزوربشن جو ہوتے ہیں وہ سیکریشن کی کم ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہاں پہ
دمے کی پوری ہسٹری, یعنی اس طرح,
یعنی جو فیزیو پیتھولوجی, جو میکینزمز ہوتے ہیں جس میں ہوتا یہ ہے کہ اصل میں دمہ کیوں پیش آتے ہیں. اب جو ہے اس کے اگر ہم یہ کہیں کہ وجوہات کیا ہے, یہ وہ تھی کہ ہوتا کیا ہے دمہ میں.
ڈاکٹر صاحب, میں ایک بات پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ اکثر میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ان کو دمہ ہوتا ہے. ایک چیز میرے ذہن میں ہے, میں نے دیکھا ہے اگر ماں کو ہے تو بچے کو بھی ہوتا ہے, آیا ہے جینیٹک, یہ ماں کے پیٹ میں ہی شروع ہوتا ہے یا نہیں باہر آ کے اس کا؟
نہیں, دیکھیں بالکل, جتنے یہ خاص طور پر جو دمہ کی بیماری ہوتے ہیں اس کا ریلیشن ہے والدین کے, یعنی فیملی ہسٹری اس کی پوزیٹیو ہے کہ نہیں ہے, اور اس کی بہت حد تک اس کا اثر ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ماں کے پیٹ میں شروع ہوتا ہے, یعنی ایک انڈر لائن ان لوگوں میں ایک یہ چیز ہے
جینیٹکلی
آ رہی ہے. پھر جو ہے جو الرجن ہوتے ہیں, جو مختلف چیزیں جو ہمارے ماحول میں ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے پھر یہ بیماری جو ہے بیماری کی صورت میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ اگر والدین میں سے ایک کو جو ہے دمہ کی بیماری ہو تو 50% چانسز ہے کہ اس کے بچے کو ہو جائے, اگر دونوں کو یہ شکایت ہے تو 70% جو ہے وہ چانسز ہے.
کیونکہ میں نے دیکھا تھا, میرے ذہن میں ہمیشہ سوال تھا کہ یہ جینیٹکلی ہوتا ہے یا بعد میں آ کے پیش آتا ہے. کہ ڈاکٹر صاحب وجوہات کے بارے میں بتا رہی تھی ہمیں,
جی ایک تو یہ یعنی فیملی ہسٹری کا واقعاً رول ہے اس میں, خیر اس کے کوئی بچاؤ جو ہے وہ ہم دیکھیں, جتنے بھی بیماریاں جو ہے وہ جینیٹکلی والدین سے جو ہے بچوں میں منتقل ہوتے ہیں, ہم اس کو اوور آل جو ہے یعنی مکمل طور پر ہم اس کو جو ہے وہ نہیں کر سکتے کہ بالکل یہ وقوع پذیر نہ ہو جائے, لیکن بہت حد تک ہم اس کو روک سکتے ہیں کہ وہ جو الرجن وغیرہ ہے جس چیز سے جو ہے دمے کی بیماری ہو جاتی ہے تو بچے کو اس چیز سے زیادہ سے زیادہ دور رکھے. اچھا, وجوہات میں جو ہے وہ دو طرح کی وجوہات ہو سکتی ہے. ایک وہ ہوتے ہیں جو الرجک چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہے, جیسے فرض کریں
مخصوصاً خزاں کا موسم تھوڑا الرجک کے لیے بھی وہ ہوتا ہے,
خزاں اور بہار دونوں کا موسم ہوتا ہے, کیونکہ بہار میں جو پولنز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اور خزاں میں جب پتے گر رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی بہت سارے گرد و غبار ہو جاتے ہیں. اگر یہ ان موسموں میں, پھر اس کے علاوہ جب بھی جو ہے وہ دھول مٹی ہو جو ہے ماحول میں جو آلودگی ہو اس کی وجہ سے. اگر جو ہے فرض کرے بہت بس وغیرہ کی جو دھوئے ہوتے ہیں, یا گھر میں اگر جو ہے وہ سگریٹ نوشی یا جو حقہ ہمارے ہاتھ میں پیے جاتے ہیں,
یا حتیٰ میں دیکھیں ایئر اسپرے وغیرہ جو ہوتے ہیں,
ایئر اسپرے بالکل جو ایئر اسپرے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, اور وہ جو کیڑے مار دوائیاں ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتے ہیں, یہ سارے جو ہے وہ الرجک ہے. اچھا نان الرجن جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں فرض کرے جیسے بچے جو ہے اگر زیادہ بھاگ دوڑ کرے, خاص طور پر ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ, اور اس کے علاوہ جو ہے جیسے ایکسرسائز اگر ہیوی کرے بچے جو ہے وہ, یعنی کھیلتے کھیلتے بچے کے ایک دم سے جو ہے وہ
فزیکل کام جو کر رہے ہیں اس میں ان کا ہو سکتا ہے,
یعنی وہ جو سارے ہم نے چیزیں گنوائی اس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتے ہیں, اور ان چیزوں جو ورزش وغیرہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی, اور ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے, سگریٹ وغیرہ ان سب چیزوں کی وجہ سے, یہ جو ہے اریٹیشن کا کام انجام دیتی ہے یہ ساری چیزیں.
اس کو کس طرح سے بول سکتے ہیں, کس طرح سے آگے بڑھاتی ہیں,
آگے بڑھاتی ہے, یعنی شروع ایک جو ہے وہ ٹریگر کے طور پر کام کرتے ہیں کہ وہ اس اٹیک کو شروع کرے یا اس بیماری کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ شروع جو ہے اس کی وجہ سے شروع ہو جائے.
جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, بہت ہی مفید گفتگو چل رہی ہے, امید کرتا ہے ہمارے ناظرین کو بھی گفتگو پسند آ رہی ہوگی. جی ناظرین یہاں ہمیں چلنا ہے خورم کے پاس.
جی بہت شکریہ رباب, انشاءاللہ آپ لوگوں کی گفتگو چلتی رہے گی. ہمیں یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, تھوڑا سا تازہ دم ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا باہر کی لے کے آتے ہیں اسٹوڈیو کے باہر کے, اور اس کے بعد دوبارہ گفتگو کے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. جی ناظرین آپ لوگوں نے خوبصورت سا ترانہ سنا خواجہ امیری کی آواز میں, معاف کیجیے گا میں نے جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کی وجہ جو ہے آپ لوگوں کو دریا کیسپین کی طرف بھیج دیا تھا. بہرحال فریش ہو گئے ہوں گے آپ لوگ, چلتے ہیں دوبارہ رباب کی طرف.
جی بہت شکریہ خورم اور ناظرین کو. بائچر ناظرین ہمارا آج کا موضوع ہم جو بات کر رہے ہیں بچے میں دمے کی بیماریاں, ڈاکٹر آغلہ حکیمی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ ایک سوال, اور ابھی ہم گفتگو بھی کر رہے تھے اس بارے میں, اکثر لوگ گھر میں پالتو جانور پالتے ہیں, وہ پرندہ کوسکو ہو گیا یا اس سے تو میں نے دیکھا بہت سا مشکلات پیش آتی ہیں, یا بلی یا کچھ اس طرح ہوگی, آیا ہے کہ یہ اس کو آپ نے کہا ٹریگر کرے کس طرح سے دمے کی بیماری کو؟
جی دیکھیے یہ ہے, یہ صحیح بات ہے کہ اکثر جو بچے ہیں یا بڑے ہیں ان کی جو ایسما ہے وہ اسی کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں, یا اس سے جو ہے ان میں اٹیکس جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. یہ پالتو جانور ہے اور جتنے بھی پرندے رکھے جاتے ہیں, حتیٰ کہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر کاکروچ گھر میں ہے تو کاکروچ سے بھی جو ہے وہ دمے کی بیماری شروع ہو سکتی ہے, یا اس کے اٹیکس جو ہے وہ شروع ہو سکتے ہیں. یہ جو میں بات کر رہی ہوں کہ بیماری اور اٹیک, ہوتا یہ ہے کہ بیماری جو ہے وہ یا تو یہ ہے کہ آہستہ آہستہ شروع ہونے لگتے ہیں, بندہ جو ہے وہ بھی تشخیص نہیں دے پا رہے ہوتے, یعنی تھوڑا بہت ہمیں لگتا ہے کہ کچھ ہے لیکن نہیں. بچوں میں بہت ڈائگنوز کرنا مشکل ہوتا ہے سب بیماریوں کو, سب کچھ, خاص طور پر اس کو جو ہے, کیونکہ بچے کو اتنا نزلہ زکام ہو جاتے ہیں اور اسما بھی جو ہے وہ شروع میں نزلہ زکام کی طرح شروع ہو جاتے ہیں, یعنی کھانسی ہونا, صحیح طریقے سے سانس نہیں لے پانا, بچے بار بار جو ہے وہ گلا صاف کرنے جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں, یعنی کھانس کے جو ہے نا وہ گلا صاف کر دیتے ہیں ایک طریقے سے, تو جو ہے ان چیزوں یعنی اس طریقے سے بیماری شروع ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ بیماری اسی طریقے سے رہے اور ہو سکتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہو جائے, لیکن ہوتا یہ ہے اسما میں کہ ایک مرتبہ اٹیک ہو جاتے ہیں, یعنی اٹیک میں ایک دم یہ سارے علامتیں بہت بڑھ جاتے ہیں, اور اگر خدا نخواستہ اس وقت بعد بر وقت ٹریٹمنٹ نہ دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بچے جو ہے وہ خدا نخواستہ اس کی ڈیتھ پہ ہو جائے. یعنی ایک دم سے انڈرسٹوڈ بات ہے, اگر سانس ہماری رک جائے تو جو ہے وہ باقی چیزیں اتنی آسانی سے بندے کو جو ہے وہ نہیں مار سکتے جتنی جو ہے آسانی سے یہ آکسیجن اگر نہ پہنچ جائے. تو اگر ورم ہو جائے, سانس کی نالی بالکل بند ہو جائے چند سیکنڈ یا منٹ کے لیے, تو جو ہے وہ کام جو ہے.
ڈاکٹر صاحب ہمیشہ دیکھا گیا کہ کہتے ہیں اسما بچوں کی بیماری ہے, یہ بات کس حد تک درست ہے؟
دیکھیے یہ بات جو ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو اسما کے جو دمے کی بیماری ہوتے ہیں وہ اپنے جو پیک پہ جاتے ہیں وہ 5 سال کی عمر میں ہوتی ہے,
ٹھیک ہے,
یعنی اس سے جو ہے وہ چھوٹے ایج میں یا بڑے ایج میں بھی جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے, لیکن جتنے بھی اکثر ڈائگنوز ہوتے ہیں وہ 5-6 سال کی عمر میں ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ بچوں کی بیماری, لیکن اللہ کا جو ہے وہ اس میں لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو بچہ جو ہے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے, تو یعنی نوجوانی کے ایام میں جب وہ بچہ پہنچ جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ دمے کی بیماری اکثر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے جو ہے کیونکہ بچوں میں ڈائگنوز اس کی ہو جاتی ہے اور بچوں میں زیادہ ہے, اور بڑے ہونے تک جو ہے اکثر بچوں میں یہ بیماری بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے, تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بچوں کی بیماری ہے.
اچھا
وغیرہ بڑوں میں بھی جو ہے
یہ دیکھا گیا. اچھا ایک بات مجھے اور یہ پوچھنا تھا کہ یہ اس کی جو हम फर्ज करें, हम डॉक्टर के पास तो खैर एक इलाज होता ही है इसका, दवाई से इससे, हमें घर में ऐसे क्या इकदाम करने चाहिए कि हम इस बीमारी से बच सकें, या एक हद तक अगर ये हो गई है तो उसको रुकाव के लिए रोकथाम करें इसके लिए?
देखिए, पहली बात तो ये है कि सही तौर पर इसकी तशखीस होनी चाहिए कि वाकई दमे की बीमारी है, यानी किसी और बीमारी को जो है वो किसी और चीज़ों को इससे मिक्सअप नहीं होनी चाहिए। और पाँच छः साल से इसकी तशखीस, खती तशखीस होना थोड़ा बहुत मुश्किल है। वैसे खैर अब तो मेडिकल फील्ड बहुत बढ़ चुके हैं, यानी जो पोस्ट स्पेशलाइजेशन की जाते हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा जो है वो आसानी से तशखीस दे पाते हैं। छः साल के बाद तो बहुत ही आसान है, क्योंकि जो है वो एक जो है यानी यूँ कहना चाहिए कि रेडियोलॉजी के जो या जो ऑपरेटर्स होते हैं उसके थ्रू जो है वो अक्सर हद तक जो है वो इसकी तशखीस होती है, तो बहुत ज़्यादा आसान हो यानी छः साल के बाद बहुत ज़्यादा आसान है इसकी तशखीस देना। लेकिन जो है जब तशखीस हो जाए कि दमे की बीमारी, तो तब जो है वो फिर वालिदैन का इसमें ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट है इसके इलाज में बनस्बत इसका के डॉक्टर के। उसमें होता यह कि पहले तो यह है कि वालिदैन को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस चीज़ से बच्चे की जो है वो जो अलामतें हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, या किस चीज़ की वजह से जो है वो अटैक्स बच्चे की जो है वो बढ़ जाते हैं या शुरू हो जाते हैं, उस चीज़ से जो है वो बच्चे को दूर रखे। इसमें जो है एक वही है मैंने कहा कि जो एलर्जिक चीज़ें हैं, और एलर्जिक चीज़ों में जो है वो इन्फेक्शन भी है, अगर किसी भी वजह से, चाहे वो वायरल है चाहे वो बैक्टीरियल है, उस अगर नज़ले ज़ुकाम भी सिंपल हो जाए तो हो सकता है कि उससे दमक के जो अटैक से वो ज़्यादा हो जाए, ख़ासतौर पर ठंडी हवा जैसे आजकल के मौसम में। तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि बच्चे को किस चीज़ से जो है वो उसके अटैक शुरू हो जाते हैं या उसके अलामतें ज़्यादा हो जाते हैं, उस चीज़ से बच्चे को दूर रखे, एक ये है। दूसरा ये है कि अब हो सकता है कि आपने सब चीज़ें रखी सही रखी हो जिस बच्चे को, लेकिन फिर भी अगर बच्चे को अटैक्स हो रही है तो एक चीज़ जो बहुत अक्सर लोग भूल जाते हैं वो माइट होना है। माइट जो एक बहुत एक छोटे टाइप के जो कीड़े हम कह सकते हैं माइट, जो फर्श और कालीन वगैरह में जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ख़ासतौर पर जो है अगर कालीन को सही तरीके से वैक्यूम ना करे, उसको जो है वो थोड़ा उसमें अगर नमी वगैरह भी रहे, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। अक्सर लोग कहते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया है फिर भी बच्चे में अटैक से, तो माइट का ख्याल रखें। काकरोच जो है वो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, तो उसको ख्याल रखें। ये फाइंड आउट करें वही कि किस चीज़ से बच्चे को अटैक्स हो जाते हैं, एक ये बात याद रखें। दूसरी ये है कि बच्चे को जो है वो सही तरीके से अगर उसकी दवाई सही तरीके से वक्त पे दे दे, सही तरीके से उसकी ट्रीटमेंट करे, तो बहुत हद तक जो है वो इससे रिलीफ मिल जाते हैं, यानी बीमारी से
रिलीफ मिल जाता है। ये खत्म होने वाली बीमारी भी है या नहीं, ये रहती है अंदर?
नहीं, ये देखिए मैंने जैसे बताया कि एक तो ये है कि नौजवानी तक पहुंचते पहुंचते ये बीमारी खुद खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट सही तरीके से करेंगे तो बहुत हद तक जो है वो बीमारी जो है वो रुक पाएगी या खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप नाकिस तौर पर दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे तो वो जो है फिर जो है वो इतने उम्मीद ना रखे कि सही हो जाएंगे, क्योंकि इसके जो बांस दवाएं होते हैं वो कोर्टोन होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, तो इसलिए जो है थोड़ा बहुत मैंने इसको जो है असल में एक कॉन्सेप्ट है ना कि अगर बच्चे को जो है वो स्प्रे दे दिया ना तो माँ और वालदेन की जो है अजीब से फीलिंग्स होते हैं स्प्रे के बारे में कि देख इतने छोटे बच्चे को हम स्प्रे जो है वो यूज़ करवाए, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप यूज़ करवाएं इंशाल्लाह जो है वो
निजात मिलेगी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, और यहाँ हमारा वक्त खुर्रम के पास आने का, उनकी कुछ नई और ताज़ी खबरें सुनने का। जी खुर्रम,
बहुत शुक्रिया। मेरी जो खबर है वो भी बच्चों से मुतालिक है, और इंशाल्लाह उसके बाद लौटाएंगे आप लोगों की तरफ, बात करेंगे थोड़ी सी चाइल्ड लेबर के बारे में। एक जो बहुत अहम मसला आजकल दुनिया में पेश आ रहा है कि बच्चों को वो उम्र जिसमें बच्चों के पढ़ाई करने के दिन होते हैं, खेलने कूदने के दिन होते हैं, समझने पूछ यानी मेंटल ग्रोथ जो नफसियाती जो उनकी ग्रोथ है उसके दिन होते हैं, उसमें आप लोग देखते हैं कि बच्चों को जो है बहरहाल मुख्तलिफ कामों पे लगा दिया जाता है जो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसमें बहुत से जो है बहरहाल स्टैटिस्टिक दिए जाते हैं, एक जो अभी बिल्कुल नया नया स्टैटिस्टिक आया है उसमें कहा जाता है कि 217 मिलियन बच्चे जो दुनिया में हैं वो बहरहाल चाइल्ड लेबर का शिकार हैं, और चाइल्ड लेबर के शिकार के बारे में एक जो उसकी डेफिनेशन बताई जाती है वो ये कहा जाता है कि 5 से 14 साल के बच्चों को काम पे लगाना। अलबत्ते ये जो डेफिनेशन है ये साउथ एशिया और एशिया के साइड पे जो कानून है उसमें है, जो बाहर के ममालिक हैं यूरोप वगैरह उसमें कहा जाता है कि 5 से लेके 18 साल तक की उम्र के बच्चों को अगर काम पे लगाया जाए तो वो चाइल्ड लेबर में हिसाब होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 14 साल से ऊपर जो है हमारे इलाकों में जो है चाइल्ड लेबर हिसाब नहीं होती, यानी कानून ही नहीं है इस चीज़ का कि उसको रोका जा सके। बहरहाल मुतादिद जो है यूनाइटेड नेशन की तरफ से और मुख्तलिफ किस्म के कानून जो हैं वो बनाए गए, जिसमें एक जो है फैक्ट्रीज एक्ट बनाया गया 1950 में, और जिसमें कहा गया कि जी 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको फैक्ट्रियों में काम करना बहरहाल ना दिया जाए, ये एक एक्ट आया। उसके बाद जो है माइंस एक्ट था, माइंस का मतलब ये जो माइन का जो कोयले की कान हो गई या सोने की कान हो गई, मुख्तलिफ किस्म के कानों में जो बच्चे काम करते हैं उसका एक्ट आया। उसमें भी यह कहा गया कि 5 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको जो है कानों में बिल्कुल काम ना करने दिया जाए। उसके अलावा चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट जो है 1980 में आया, उसमें भी इसी तरह की कुछ बहरहाल बात की गई। और उसके बाद केयर एंड प्रोटेक्शन का एक्ट जो आया 2000 में, जिसमें ये कहा गया कि जो शख्स जो फैक्ट्री या जो भी बंदा बच्चों को 5 साल से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको अगर काम पे लगाएगा, वो बेशक पैसे की लालच की वजह से हो, बेशक वो जो है डरा धमका के काम करवाया जाए, वो जो है 6 महीने के लिए उसको जेल जो है भुगतनी पड़ेगी। अब ये 6 महीने जो है यहाँ पर लिखी गई है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि बहरहाल वो कम होती होती कितनी हो जाएगी। बहरहाल ये सारे एक्ट्स हैं यहाँ पर। और उसके अलावा जो है एक और एक्ट आया जिसमें ये लिखा गया था कि बच्चों को 5 साल से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको ये हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि वो उनको मुफ्त तालीम और जी और उनकी जो आज़ादी है उसका उनको इंश्योर करवाए कि वो लोग तालीम हासिल कर सकें। बहरहाल इस पर कितना अमल हो रहा है ये आपके सामने है। और उसमें एक और जो नुक्ता था इस कानून का वो ये था कि 25% सीटें जो प्राइवेट स्कूल हैं वो ऐसे बच्चों को दी जाएं और उसमें जो है हुकूमत इनकी मदद करेगी कि जो बच्चे जो पैसे नहीं दे सकते हैं, प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस नहीं दे सकते, वो उन स्कूलों में जाके पढ़ें। बहरहाल जो हकाइक हैं वो आप लोगों के सामने हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे जो है बहरहाल मुख्तलिफ वेबसाइट से मिली, मैंने कहा आप लोगों की खिदमत में पेश की जाए। छोटा सा एक वक्फा लेंगे, उसके बाद दोबारा आप खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। जी आपकी खिदमत में हाजिर हैं और बात करेंगे थोड़ी सी खूबानी के बारे में। बड़ा अरसा हो गया इसके बारे में, इस फल के बारे में हमने बार बार बात नहीं की। अलबत्तः ज़्यादा इसके फ़वाद नहीं है, लेकिन एक बहुत अहम फ़ायदा है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं ये बताते चलूं कि इसमें है क्या क्या। वाइटामिन ए की मकदार इसमें जो है बहुत ज़्यादा होती है, और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाइटामिन ए का ताल्लुक जो है हमारी जिल्द से बहुत गहरा ताल्लुक होता है। 13% वाइटामिन ए है, वाइटामिन सी 6% है, फाइबर की मकदार 3% है, पोटाशियम 3% और कैलोरीज जो है वो 16%, जिसमें बहरहाल कैलोरीज जो है वो बताई जाती हैं। खुबानी के बारे में एक जो चीज कही जाती है कि जिसकी वजह से इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये है कि दिल के अमराज से बचने के लिए और आंखों की शादाबी के लिए, आंखों की खूबसूरती के लिए इसका इस्तेमाल करें। उसके साथ आप जिन लोगों को जो है कब्ज़ वगैरह का मसला है, कॉन्स्टिपेशन का मसला है, इसके अंदर फाइबर की मकदार भी अच्छी खासी होती है, इस्तेमाल करें। कहा जाता है LDL कोलेस्ट्रॉल जो है, जिसको गंदा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, जो ख़तरनाक कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको ये कम करती है। वाइटामिन ए की वजह से इसमें कहा जाता है कि जो आपकी जो आईसाइड है उसको बहुत अच्छा रखती है, बड़ा मज़बूत रखती है, आपकी जो आंखें हैं वो कमज़ोर नहीं होने देती। बहरहाल कहा जाता है कि जो गाजर खाने का उसका एक फ़ायदा होता है और उससे जो है आँखें ठीक रहती हैं। जो जो आँखों के डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि गाजर जो है वो बचपन में आपकी आँखों के लिए मुफीद है, लेकिन जब आप बड़े हो गए हैं तो उसमें गाजर की बजाय आप खुबानी खाएं, क्योंकि गाजर जो है उस वक्त आप पे असर नहीं करेगी। और ये एक और जो चीज़ कही जा रही है कि खुबानी के इस्तेमाल से कहते हैं कि जो आँखों को जो ब्लड सप्लाई है, जो खून उसको पहुँच रहा है, वो बेहतर तरीके से पहुँचता है। इसकी वजह से कहा जाता है कि जो पट्ठे आँखों के पास होते हैं, जो मसल्स आँखों के पास होते हैं बड़े नाजुक किस्म के, वो क्योंकि वो उम्र के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं। जारी बात है, हर चीज़ जो हर जो मसल है हमारे बदन में, वो जैसे जैसे हमारी उम्र ज़्यादा होती जाती है तो वो कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं, जिसको मस्कुलर डिजेनरेशन भी हम लोग कहते हैं। तो वो खुबानी के इस्तेमाल की वजह से उसमें जो है काफ़ी हद तक वो आ जाता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता करके बहरहाल आपके जो मसल्स हैं वो ख़राब होंगे और बहरहाल आंखें जो हैं आपकी शादाब रहेंगी। आखिरी में एक नुक्ता दोबारा बताते चलूँ, वो ये है कि फाइबर का, फाइबर की मिकदार इसमें बहुत ज़्यादा है, तो जिनको पेट के मसाइल हैं वो जितना ज़्यादा हो सकता है खुबानी का इस्तेमाल करें तो उनका जो है पेट के निज़ामी निज़ाम के मसाइल जो हैं वो बिल्कुल ठीक रहेंगे। चलेंगे रुबाब के पास ताकि रुबाब गुफ्तगू का आगे चला सकें। जी रुबाब,
बहुत शुक्रिया हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें, बहुत ही मज़ेदार बातें की आपने। चलते हैं डॉक्टर साहबा के पास, चूँकि अब खाने पीने की कुछ बातें हो गई तो कुछ खाने पीने की तरफ आते हैं। कहते हैं होता है कि कुछ ऐसे खाने या कुछ ऐसे मसाले वगैरह का भी रिएक्शन होता है अस्थमा पे, बात सही है या नहीं?
देखिए मसाले का तो होता है, ख़ास तौर पर अगर जो है वो जिस वक्त भून रहे होते जूस के स्मेल निकलते हैं या वैसे ही पाउडर की सूरत में अगर खुश्क हो तो उस सूरत में, लेकिन इसके अलावा जो है खाने पीने का इतने ज़्यादा नहीं बताया जाता है। लेकिन अगर जो है वालदेन ये डिटेक्ट करते हैं कि बच्चा अगर कोई ख़ास चीज़ खाने के बाद उसकी खांसी शुरू हो जाती है या उसमें जो अलामतें हैं यानी जो उसके सांस लेने का जो अमल होता है वो उसमें फ़र्क पड़ जाता है, तो फिर उस चीज़ से जो है वो बच्चे को जो है वो दूर रखे ना खिलाए पिलाए। लेकिन वैसे ख़ास तौर पर जैसे बाकी चीज़ों के लिए जैसे हम 100% कहते हैं जैसे सिगरेट वगैरह या जो आलूदगी है गर्द गुबार वगैरह जिसको हम कहेंगे, तो खाने पीने के लिए इतने स्ट्रिक्ट तौर पर नहीं कहा जाता है। तो अब अगर हम मज़ीद जो है वो थोड़ी बहुत वालदेन के वो क्या कर सकते हैं उस हवाले से बात करें, तो पहली बात यह है कि जिन बच्चों को अस्थमा के जो है या एलर्जी की जो है शिकायत है तो उन बच्चों को जो है उनके साथ जो है वो ज़रूर कहीं उनके जेब में उनके गले में स्कूल में जो है उनके टीचर्स को बताना चाहिए और उनके जो है वो होने चाहिए उनके पास। ख़ास तौर पर बड़ों में भी जो है ये कहा जाता है कि अगर उनको कोई ख़ास बीमारी है तो उनके कहीं उनको लिख के रखे कि इस बंदे को ये बीमारी
है, मसला है, ठीक है।
ख़ास तौर पर दमे की बीमारी में क्योंकि इस पर एकदम से अटैक पड़ जाते हैं,
ठीक है।
तो एक ये है, दूसरी बात यह है कि बच्चे के स्प्रे जो है वो ज़रूर उसके साथ रखे, बच्चे को जो है वो ज़रूर आप सिखा दें कि स्प्रे किस तरीके से यूज़ करना होता है,
ठीक है।
अगर नहीं तो वही ये बात लाजमी बच्चे के साथ जो है वो लिख के रखे कि इसको दमे की शिकायत है कि अगर खुदा न खासा कहीं कुछ हो जाए अटैक हो जाए तो बाकी जो लोग के जो है वो समझ सके कि क्या कर सकते हैं। अब अक्सर लोगों को स्प्रे यूज़ करना भी आता है तो इसलिए जो है ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है।
हमारा वक्त बहुत मुख्तसर है, आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा कि अटैक अगर किसी को हो जाए बच्चे में अगर अटैक हो जाए तो फौरी तौर पर क्या करना चाहिए?
देखिए फौरी तौर पर वही कि स्प्रे बच्चे को जो है वो इस्तेमाल करवाए जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, चाहे वो ब्रोंको डायलेटर हो, यानी इसका मतलब ये होता है कि जो मसल्स को, मैंने कहा इसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, जो मसल्स को ढीला कर दे उस ये है, या जो कॉटन होता है जो एकदम से वर्म को जो है वो ख़त्म कर देते हैं। तो यही दो इसमें मैंने बताया था कि ज़्यादा इसका अमल दखल होता है कि या जो है वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं या वर्म हो जाते हैं। तो स्प्रे जो है वो लाजमी तौर पर रखे उस अटैक्स में ख़ास तौर पर, और यह कि दवाएँ जो है वो बच्चे को बाकायदे से इस्तेमाल करवाए। अक्सर लोगों के होता है कि बच्चों को दवाई इस्तेमाल नहीं करवाते हैं कि आदत पड़ जाती है, या आदत पड़ने वाली बात नहीं है। आप अगर बीमारी को जो है बीमारी नाक़िस जो है वो उसको आप उसके
अधूरा छोड़ देंगे,
अधूरा करें जो है वो, या जो है कभी कर लिया कभी नहीं एक आध आपने जो मर्जी है वो टेबलेट दे दिया कुछ नहीं दिया, तो इस तरीके से बिल्कुल भी ना करें, इसके ट्रीटमेंट को कम्प्लीट करें, इनशाला जो है वो बच्चे को जो है वो इससे छुटकारा जो है हासिल हो जाए।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत मुफीद गुफ्तगू रही और उम्मीद करते हैं हमारे नाज़रीन को भी पसंद आ गई, मेरे तो बहुत ही मुफीद साबित हुई
इंशाल्लाह
जी। और नाज़रीन हमें यहाँ पे डॉक्टर साहिबा से खुदाफसी करनी है और चलना है खुरम के पास।
बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, खूबसूरत और मुफीद गुफ्तगू हमारे नाज़रीन के लिए आप लोगों ने पेश की। बहरहाल वक्त हुआ है इस्फहान के पास, एक बड़ी अहम इरफानी जगह है पीर बकरान के नाम से और तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पे है इस्फहान से, तो चलते हैं वहाँ की सैर करते हैं और उसके बाद दोबारा आप खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
आरामगाह पीर बकरान इसी नाम के गांव में इस्फहान के जुनूब मगरिब में 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। मोहम्मद बिन बकरान की कब्र पर बने इस बुके को आरामगाह पीर बकरान कहा जाता है। ये मकबरा 7013 से 7012 के अरसे के दौरान बनाया गया था। मोहम्मद बिन बकरान जो बड़े आरिफ और जाहिद थे, सुल्तान मोहम्मद खुदाबंदे की हुकूमत के ज़माने में रहा करते थे। इस शख्सियत को खराज तहसीन और उनकी अजमत को सलाम करने की गरज से उनकी कब्र पर बड़ा आलीशान मकबरा बनाया गया है। इस मकबरे को बड़ी महारत से सजाया गया है آرام گاہ پیر بکران میں ایک ایوان ہے جو طاق کسرہ کی شکل کا ہے۔ یہ عمارت تین حصوں پر مشتمل ہے، اس میں رواق بقا، صحن بقا اور مقبرہ شامل ہیں۔ اس خوبصورت اور تاریخی عمارت کے شمالی حصے میں مقبرہ واقع ہے۔ مقبرے میں داخل ہونے کے لیے ایک چھوٹا سا دروازہ ہے۔ اسی حصے میں پیر بکران چلہ کشی کیا کرتے تھے۔ اس حصے کی سجاوٹ اب مکمل طرح سے محو ہو چکی ہے۔ مقبرہ پیر بکران کو کاشیکاری اور چونے کے کام سے سجایا گیا تھا۔ اس مقبرے کی مسجد کے محراب میں چونے کا نہایت ہی ماہرانہ کام کیا گیا ہے، اگرچہ بعض جگہوں پر چونے کا کام خراب ہو گیا ہے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے، لیکن اس کی خوبصورتی اور مہارت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام صرف ایرانی ہنرمند ہی انجام دے سکتے تھے، اور یہ ان کے ذوق و شوق کا ہی نمونہ ہے۔ اس عمارت کے صحن پر بھی چھت ہے۔ صحن کے چاروں طرف دالان بنے ہوئے ہیں اور اس میں آپ غلام گردشیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ محمد بن بکران کا مقبرہ شمالی حصے میں ہے۔ دراصل یہ مقام اور یہاں کا بڑا دالان وہ جگہ تھی جہاں پیر بکران درس دیا کرتے تھے۔ دالان کے آخری حصے کو جالیدار دیوار سے محصور کر دیا گیا ہے اور اس بڑے دالان کو مقبرے کی شکل دے دی گئی ہے۔ دالان میں خوبصورت طاق اور ان کی قوسیں دیکھی جا سکتی ہیں جن پر چونے کا خوبصورت کام کیا گیا ہے۔ آرام گاہ کے بالائی حصے پر بھی طاقدار دالان ہیں۔ یہ دوسرے منزلے پر ہیں اور دونوں طرف کی غلام گردشوں کو آپس میں ملاتا ہے۔ مقبرے کا ایک چھوٹا دروازہ ہے جہاں سے جھک کر اندر داخل ہوا جا سکتا ہے۔ مقبرہ تاریک ہے اور اس میں مخروطی شکل کے طاق ہیں۔ اس بات کا امکان ہے کہ دالان کی تعمیر سے قبل اسی مقام پر درس دیا کرتے تھے۔ محمد بن بکران کی قبر پر ایک بڑا مرمر کا پتھر لگایا گیا ہے جس پر 703 کی تاریخ لکھی گئی ہے۔ اس سنگ قبر پر کندہ کاری کے استاد سراج کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ پیر بکران کے مقبرے میں سجاوٹ کا بہترین کام کیا گیا ہے۔ اس میں آپ کو چونے اور کاشی کا بہترین کام دیکھنے کو مل جائے گا۔ عمارت کے ہر حصے پر چونے کا کام کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس مقبرے کو چونے کے کام کا شاہکار کہا جاتا ہے۔ یہ شاہکار ایلخانیوں کے زمانے میں بنایا گیا تھا۔ داخلی سطح کے اہم حصوں کو پکی مٹی یا چونے کے کام سے سجایا گیا ہے اور غیر اہم حصوں کو اینٹوں سے سجایا گیا ہے۔ اہم حصوں بالخصوص محرابوں میں ماہرانہ چونے کا کام دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس عمارت میں گہری نیلی اور آسمانی رنگ کی لعابی کاشیوں کو مختلف اندازوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ستارے اور سلیب کی شکل کی کاشیوں سے عام طور پر راہ رو سجائے جاتے تھے، لیکن یہاں پر ان سے بیرونی اور داخلی سطوح کے فوقانی حصوں کو سجایا گیا ہے۔ اس عمارت میں چونے سے بنائے گئے نقوش اور کتبے نہایت دیدہ زیب اور دیدنی ہیں اور اپنی مثال آپ ہیں۔ یہ نقوش اور کتبے غالباً خط کوفی اور سلس میں لکھے گئے ہیں اور زیادہ تر آیات اور محمد و آل محمد پر درود و سلام و صلوات پر مشتمل ہیں۔ ان کتبوں میں محمد بن بکران کے تعریفی مضمون بھی مل جاتے ہیں۔ اس بقا میں چونے کا کام کرنے والے استاد فن کا نام محمد شاہ نقاش ہے جو کتبوں پر لکھا ہوا ہے۔
جی ناظرین، آپ لوگوں پیر بکران کی سیر کی، مقبرے کی، اور امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ بہرحال میں اس طرف آ جاؤں گا رباب کی طرف، اور جی بہرحال ہمارے ساتھ جو ہیں کچھ ہی لمحات میں فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہوں گی سیدہ ارم نقوی صاحبہ۔ اگر تو ان سے ہمارا رابطہ ہو گیا تو میں ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
جی ہلو، السلام علیکم۔
السلام علیکم ارم نقوی صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں ایک بار پھر ہمیں وقت دیا۔
بہت شکریہ آپ کا۔
جی سیدہ ارم نقوی صاحبہ، عربین نزدیک ہے، اس سلسلے میں ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا ان سے جو ہے اس موضوع پہ گفتگو کریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام آپ لوگوں کو بھی اور تمام ناظرین کو اپنی طرف سے تسلیت پیش کرتی ہوں عربین کی مناسبت سے۔
بہت شکریہ۔
تو اس کے بارے میں البتہ مختلف وہ ہیں روایتیں۔ ایک تو یہ کہ اربعین کا البتہ اربعین کے واقعے کے متعلق جی. کہ یہ کہتے ہیں اسی سال میں 61 ہجری میں پیش آیا کچھ کا ہے کہ یہ نہیں اس سال نہیں اس کے بعد میں یہ واقعہ کہ جب اسیرا نے کربلا کو جب رہا کیا گیا اور وہ واپس جب مدینہ جاتے ہوئے انہوں نے تقاضا کیا کہ امام سجاد سے کہ ہم جو ہے کربلا سے گزر کے جانا چاہتے ہیں
صحیح.
تو وہاں پہ جب پہنچے امام حسین کے اور جہاں پہ دوسرے شہداء کے اس مقام پہ کہ جہاں پہ ان کی شہادت واقع ہوئی تھی
جی.
تو وہاں پہ تمام بیویوں کے تقاضا پہ امام جو ہے رکے اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک اور قافلہ بھی آیا ہوا ہے کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جابر ابن عبداللہ تھے
صحیح.
تو وہ بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے اور وہ بھی گریہ وزاری کر رہے تھے تو یہ سب قافلہ بھی رکا اور انہوں نے وہاں پہ اور وہ دن جو تھا وہ 20 سفر کا تھا
جی.
اور وہاں پہ اس قافلے نے رک کے جو ہے امام کے اربعین کے مناسبت سے اور سب اپنے شہداء کو جو بھی اہل بیت کے خاندان کے لیے گریہ وزاری اور ماتم کیا. تو یہ وہی واقعہ ہے جس کے ابھی بھی آج بھی ہم اس کی یاد میں یہ اربعین مناتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے.
سیدہ اکبر صاحبہ ہمارے پاس وقت محدود ہے, بہت شکریہ آپ نے مختصر الفاظ میں ہمارے ناظرین کو اربعین کے بارے میں بتایا. انشاءاللہ کل بھی ہم جو ہے انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے آپ سے رابطہ کرنے کی تاکہ مزید گفتگو کر سکیں. بہت شکریہ,
بہت شکریہ
جی. تو یہ جو ہے مختصراً ارم نقوی صاحبہ سے ہم نے جو ہے اربعین کے بارے میں بھی بات کر لی. بہرحال ہمارے پاس ایک منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں رہ گیا اور امید میں صرف یہ بہرحال اپنے ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اجاز صاحب نے ہمیں کمنٹ لکھا اور انہوں نے ایک موضوع ہمیں بتایا ہے, انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے جو ہے پوری کوشش کریں گے کہ اس موضوع کو اپنے ہفتے کا موضوع بنائیں. تو معاف کیجیے گا کہ موضوع جو ہے اس ہفتے کا ڈیسائیڈ ہو چکا تھا, اس وجہ سے جو ہے ہم ابھی اس ہفتے اس کو سلیکٹ نہیں کر سکتے. بہرحال اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.
میں ایک دعا کرنے چاہوں گی جی ناظرین, جو اس وقت کربلا میں ہے جو اس وقت زیارت گاہوں پہ ہیں ہمیں اپنی دعاؤں میں بالکل مت بھولے گا. یہ
بالکل
دلی خواہش آپ سے جی.
بالکل ہمارے ساتھ, میں یہ بتاتا چلوں کہ کل جو ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر فہد ہوں گے اسٹوڈیو میں اور ان کا جو موضوع ہوگا وہ فالج سے متعلق وہ گفتگو کریں گے. امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی ان کی جو گفتگو ہے. اور صرف میں یہ دعا کرتا چلوں, یہ بات کرتا چاہوں کہ آخر میں پروگرام کے کہ ہمیشہ جو ہے کبھی بھی دیر نہیں ہوتی, کبھی بھی آپ واپس نہیں لوٹ سکتے. جو آپ نے غلط کام کیے, جو آپ نے غلطیاں کی, اگر یوں کہوں تو صحیح ہے, غلطیاں جو کی ان کو نہیں ہم سنوار سکتے, لیکن ہم آج عہد کر سکتے ہیں, ہم آج یہ ٹھان سکتے ہیں کہ آج کے بعد ہم کوئی غلطی نہیں کریں گے, آج کے بعد ہم اس راہ پہ چلیں گے جو راہ اللہ تعالیٰ نے, اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آئمہ نے ہمارے لیے جو ہے اس کو مشخص کیا ہے انشاءاللہ. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور رباب کو پروگرام صبح زندگی سے تہران اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے.